अब चलिए आयत 232 पे मेरे साथ रहिएगा। वह इजा तल्लक तुम, और जब तुम तल्लाक दो, कौन दे, किसको कहा जा रहा है? आप देख रहे हैं जमा के सीगे हैं, मुसलमान मर्द मुराद है, तुम यानी यू ऑल, कौन, मुसलमान मर्द, क्योंकि किसी भी सूरत में एक मुसलमान औरत की शादी किसी गैर मुस्लिम से नहीं होती, ना अहले किताब से होती है और ना पेगन यानी बुत परस्त से, मुशरिक से होती है। ये बात लिख ले, तुम से मुराद मुसलमान मर्द है। द लीस्ट मिनिमम शर्त शादी करने की किसी औरत की जिस मर्द से है, यह कि वो डिक्लेयर करे, इजहार करे कि मैं मुसलमान हूं, आई एम अ मुस्लिम, नाम का मुसलमान ना हो बल्कि सही तरीके से हो। तो फरमाया कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको, फबलगना, फिर वो पहुंच जाएं अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, मुराद यहां इद्दत है, वही 3 माह की बात याद रख लें, फिर क्या करो, फला तादुलूहुन्ना, फिर ना रोको उनको। ये नया लफ्ज आपके सामने आया है, तलाक का लफ्ज मैंने पीछे आपको बता दिया था कि तलाक आजाद होने को कहते हैं, तो मुराद जाए कि एक औरत को आजाद कर दिया जाए। ये तो लफ्ज निसा है ना, यहाँ नून सीन वो अनिस्वा, निस्वा निस्वान, ये लफ्ज इमरात उनकी जमा है, लफ्ज इमरात उन कहते हैं एक औरत को, वन वुमेन, वुमेन, ठीक है, तो निसा क्या है, वुमेन जमा का सीग है, यानी बहुत सारी औरतों के लिए आता है, ठीक है। सूरत निसा में भी इसको हम जाके पढ़ेंगे। उर्दू में आप लफ्ज सुनते हैं निस्वानियत, औरत बना, फेमिनिज्म, वही है ये सब कुछ, ये सब कुछ उसी के अंदर आता है। तो ये मजाजी मानों में मर्दों के ऑपोजिट के लिए बोला जाता है, यानी एक मर्द है तो दूसरी जो है वो उसके ऑपोजिट में औरत है। खैर, यहां निसा से क्या मुराद है, यहां रुक के सोचिएगा, जरा सा अपना जहन खोल के रखें। वही ना, तलक तुम निसा, तर्जमा क्या बना, जब तुम तलाक दो औरतों को, हालांकि तलाक तो बीवी को दी जाती है, कौन बताएगा आपको यहां निसा से मुराद जौज है, कुरान तो नहीं बता रहा, मैंने आपको भी बता दिया निसा कोई भी औरत। कितना मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं लोग सिर्फ लफ्ज निसा को यहां दिखाकर, मर्द जिस औरत को मर्जी तलाक दे उसकी औरत को मैं तलाक देता हूँ, फलां की औरत को देता हूँ, लेकिन यहां निसा से मुराद जौज है, बीवी है, ये किसने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। क्यों, आप देखिए कि गांव में आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, मुझे इसलिए गांव का पता है कि हमारे पास एक बाबा जी थे, तो वो हमें सुनाते थे कि गांव में किसी का कहना ना ये फलां की बीवी है, तो कहते थे ये उसकी औरत है, बात समझ रहे, आज भी कहते होंगे लोग, आप लोग मान रहे हैं ना इसको, शहरों में नहीं मैंने सुना। तो वो एक वाक्य सुना रहे थे कि लड़ने को मर गया एक शख्स किसी को, जब उसने कहा ना इस औरत का ख्याल, कहते तूने इसको औरत कहा क्यों है, मतलब उसका ख्याल था कि औरत बीवी को कहते हैं। तो निसा का लफ्ज यहाँ डिक्शनरी से मैं आप नहीं समझ सकते, या निसा से मुराद या आप जौजा कह लीजिए या बालतुन कह लीजिए, बाउल की जमा, लेकिन मुराद इससे बीवी है। तो कुरान को पढ़ने के लिए अकल की भी जरूरत है, अगर डिक्शनरी से पढ़ें, साइंस से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, लेकिन हदीस की डिक्शनरी के बगैर आप कुरान नहीं समझ सकते। खैर, फबलगना, बालाम गैन इसका रूट है, बलगा, थोड़ा सा इस लफ्ज का भी जरा देखिए, जब वो पहुंचे, तो बलगा का लफ्ज क्यों आया अरबी में पहुंचने के लिए, और बहुत सारे लफ्ज हैं, हाँ, तो बलगा के लफ्ज को थोड़ा देखें कि इसको अरबी में और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बलगल मकान बलूगन, कहते हैं वो इस मुकाम पर पहुंच गया। बलूग और बलाग के मानी होते हैं मकसद के आखिरी सिरे तक पहुंच जाना, यहां मुराद है एंड ऑफ इद्दत, लफ्ज बलगा से पता चल रहा है कि इद्दत के आखिर तक, बात समझे आप? आप कहते हैं ना कि मिसाल है कि आप यहां से किसी को पाकिस्तान के लिए रुख्सत किया आपने, रास्ते में स्टॉप था उनका दुबई में, जब वो कहेंगे ना कि मैं दुबई पहुंच गया, तो बलगा नहीं बोलेंगे, वाई, क्योंकि उनकी डेस्टिनेशन पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के लिए कहेंगे कि बलगल पाकिस्तान, समझे? तो यहां लफ्ज बलगा से इद्दत की इंतहाई मुद्दत है, आखिरी सिरा, बिल्कुल जमानी हो या मकानी हो, किसी अंदाजे के साथ करना, करीब पहुंच जाते हैं ना जब मंजिल के, तो उसको भी बलगा कहते हैं। बलग न जला हुन्ना, इसी चीज की बात होगी, मुकर्रर मुद्दत की आखिरी हद को कहते हैं बलगा, किसी चीज का इतना काफी होना किसके जरिए से इंसान अपने आखिरी मकसद तक पहुंच जाए और इसे किसी और सामान या जरिए की जरूरत ना हो। अच्छा, यहां से थोड़ा सा देखिए कि अल बलगतु कहते हैं हर वो चीज जिसके जरिए किसी मकसद तक पहुंचा जाए, हर वो चीज जो किसी मकसद तक पहुंचाने के लिए जरूरी हो। अब मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज पे लेके जाना चाह रही हूँ यहाँ से। बोलिए जरा इस लफ्ज बालगा के रूट से कुछ और आता है। बलूगत, शाबाश। बलूगत क्या होती है? यानी बचपने की हद। बलूगत क्या है? बचपना खत्म, जवानी शुरू हो गई। अच्छा, और इबलाग, तबलीग, मुबल्लिग। यहाँ दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आगे जहाँ बलगा या बलागुन नास आएगा ना, फिर वहां बताऊंगी, वरना टॉपिक चेंज होगा कि तबलीग को तबलीग क्यों कहते हैं। आप खुश हो जाएंगे सुनकर। खैर, अब मैं उसको स्किप करती हूँ, हम आगे चलते हैं कि जब वो पहुंच जाए अपनी अजल को। अजल का लफ्ज किसको कहते हैं? देखिए, आपको पता है कि लफ्ज मुद्दत भी अरबी के लफ्ज है। ये क्यों नहीं कह दिया फैज तल्लक बलगना मुद्दत हन्ना, अजल क्यों आया? तो जरूर इस अजल की यहाँ जरूरत थी। आपको इन चीजों से फायदा हो रहा है जो मैं बोल रही हूँ? उलझ तो नहीं जाते? कम अज कम ये कह दिया करें कि सुबहान अल्लाह मा हाजल कलाम अल बशर, कि अल्लाह ये कलाम किसी बंदे का हो ही नहीं सकता। किसको इतनी ग्रामर, इतनी अरबी, इतना आता था? अल्लाह के नबी तो उम्मीद है। ये अल्लाह का कलाम है, ये इस बात की दलील है। तो बेसिकली अजल कहते हैं किसी बात की मुद्दत मुकर्रर करना। अलाजलू, किसी बात की मुद्दत मुकर्ररा। अताजील कहते हैं मुद्दत का तायुन करना, मुद्दत मुकर्रर करना। आपने लफ्ज सुने कभी हक महर के नाम के साथ एक लफ्ज आता है, महरे मुअज्जल। सूरह निसा में हम पढ़ेंगे, वो लफ्ज भी इसी से, मुअज्जल। आइन से नहीं है, हमजा से है। मुअज्जल कहते हैं वो जिसके लिए मुद्दत मुकर्रर की गई हो। यानी हक महर के लिए ये होता है कि भाई ये हमने देना है और इसके लिए ये वक्त हमारा हो गया और हमें इसको लेना है, ये सारा कुछ लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए कि मुअज्जल मतलब उसी से हो गया। हमारी मौत क्या है? अजल। वली कुल्ली उम्मत है अजल, हर उम्मत की एक अजल है, एक तरक्की और अरूज का। तो लफ्ज अजल से ये पता चल जाता है कि एक खास मुकर्रर मुद्दत है। और आपने पीछे पढ़ लिया कि इद्दत की मुकर्रर मुद्दत है, एक एक दिन देखा जाएगा। आपको पता है कि चांद के साथ इसका हिसाब होता है। बाज लोगों की इद्दत का फर्क जो है वो शमसी और दूसरे कैलेंडर से करें तो कई दिन का फर्क बन जाता है 3 माह के अंदर, तकरीबन 6 दिन, बल्कि बाद दफा एक हफ्ता पीछे हो जाता है। आगे जहां ये मौत के लिए लफ्ज आएगा तो इसके लिए इंशाल्लाह आपको बहुत ही खूबसूरत बात बताऊंगी, लेकिन आगे हम चलते हैं। फला तादलू हुन्ना, ये लफ्ज अजल क्या है भाई? देखिए, आप अरबी पे जरा नजर डालिए। जब तुम्हारी औरतें पहुंच जाएं अपनी इद्दत को या अपनी मुद्दत को, फला ताजुलू हुन्ना, मतलब के मत रोको उनको। तो ये क्यों नहीं आ गया फला तमनाउ हुन्ना? मना का लफ्ज भी अरबी का। फर्क क्या है? मना लफ्ज आम है, बच्चा बैठा आप कहते हैं मत करो, लेकिन ये जो ना फला ताज हुन्ना, आई से डोंट डू दिस, मत करो, ये इसमें सख्ती है। आइन दाद लाम इसका रूट होता है। उर्दू में कहीं बोले? मैं पूछना चाहती हूं कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है। इनको क्या कहते हैं ये जो हमारे अक्सर खिंचे रहते हैं जी? पट्ठे। उजलात, उजलात का लफ्ज सुना? ये वही लफ्ज है, अल उजला। उर्दू में आप बताए ना उजलात, अरबी में कहते हैं अल अजला पट्ठे को, जिसके साथ मोटा सा गोश्त हो। आपने देखा ये जो बोंग होती है जैसे बकरी की टांग के साथ, या ये जिसको वो लड़के दिखा रहे होते हैं, लड़कों के होते हैं ना, इसको उजला कहते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या होती है, सख्ती होती है। अजला तक कहते हैं इस, यानी बोन पे मारा या इस गोश्त पे मारा, तो इसका मतलब कहते हैं जबरदस्ती किसी को रोकना। फर्क बस इतना लिख लें, तमनाऊ में जबरदस्ती नहीं होती, बस कह दिए ना करो, लेकिन अजला या भला ताजुलू हुन्ना में क्या है कि किसी को जबरदस्ती और सख्ती से किसी काम से रोक देना। इसी तरह तंग करना और मजबूर करना भी इसका मानी है। अजला अलैहि, इसने इस पर तंगी की, इसे रोका और बाज किया। इसी तरह अरबी में अल मोजिलात कहते हैं मुश्किल और पेचीदा मसाइल को, कॉम्प्लिकेशन इंग्लिश में लिख ले, जिनको सुलझाया ना जा सके, सख्तियां, मुसीबतें। तो बहरहाल यहां आपको फर्क समझ आ गया कि सख्ती से रोका जाए उन औरतों को, मत रोको किस बात से? अन ये के यन कहना कि वो निकाह करें, अजवाज होना अपने ही शोहरों से। शर्त क्या है? इजा तरा दऊ बही न हो, जबकि वो दोनों आपस में राजी हो, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से। तरा दऊ का लफ्ज रौ दाद जा से है, दिल की रजामंदी और रगबत के साथ खुश होना, किसी काम को खुशी के साथ करना, ठीक है। रगबत खुशी के साथ, यानी जिसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहेंगे आप इंग्लिश में, अप्रूवल के साथ, एग्रीमेंट के साथ, यहाँ इस लफ्ज से भी पता चलता है कि शौहर बीवी का दोबारा साथ जुड़ना किसी फोर्समेंट के साथ नहीं होना चाहिए, किसी मसलहत के साथ नहीं होना चाहिए, किसी ग्रज के साथ नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसको जरा और पीटते हैं, जरा इसको और बदनाम करें, बल्कि कायदे के साथ, रजामंदी के साथ खुश हों कि ठीक है जी, हमें अब अंदाजा हो गया कि हमारा पिछला फैसला गलत था, लिहाजा हम इस चीज को सही करेंगे। और यही वो लफ्ज़ है जिसे अल्लाह ने सहाबा के लिए कहा कि रदी अल्लाह अन्हुं व रदू अन। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि घर दोबारा बनेगा, लेकिन शर्त क्या है कि उसमें नीयत ये हो कि हमने इस घर को जोड़ना है, और बिल मारूफ, मारूफ का लफ्ज क्या है उर्दू में बोलिए इससे मिलते हुए लफ्ज, उर्फ ऐन राफा और मारूफ, बड़े मशहूर हैं वो लोग, यही ना। यहां देखिए इस लफ्ज की असल आज आप पढ़ेंगे, ऐन राफा उर्फ, अल अर्फ कहते हैं बू को, स्मेल को, महक, खुशबू, अरफत हूं मैंने उसकी बू को पा लिया। फिर जब किसी की बू आपने पाई तो पहचान का मानी हो गया। तारुफ लफ्ज क्या है, मेरा आपसे तारुफ है, वो भी इसी से। तो लिहाजा किसी की अलामतों और आसार को देखकर उसको पा लेना, उसको पहचान लेना, इसी से लफ्ज मारफत है। इरफान लफ्ज भी इसी से है। इस तरह का जानना इल्म से कम दर्जे का होता है। मतलब दूर गए, मैंने कहा हाँ मैं आपको वहां मिली थी, मैं आपको पहचान गई, इंग्लिश में रिकग्नाइज करूं, बट मैं आपको अंदर से तो नहीं जानती कि आप क्या है, कौन है। तो इल्म का दर्जा ज्यादा होता है मार्फत से। मार्फत क्या होती है, चीजों पे गौर करना। आपने सूफीज्म में एक लफ्ज सुना होगा आरिफ बिल्ला, ये जायज नहीं है कहना। आरिफ बिल्ला कोई दुनिया का बंदा अपने ऊपर ये दावा नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह को पहचान गया हूं, हमारी ये औकात नहीं। अभी इतना ही समझ लें, आगे भी ये लफ्ज जहां आएगा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी बारीकियां बताऊंगी। हम अल्लाह ताला के कायनात पे गौर व फिक्र करते हुए, इन नफी खल्की समावाती वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहार पे गौर करते हुए अल्लाह को पा सकते हैं, लेकिन मैं आप ये नहीं कह सकते मैंने इरफान पा लिया, अल्लाह का इरफान पा लिया, ये नहीं कह सकते। तो बहरहाल इस मादे में यके बदीगरे किसी चीज का होना, सुकून और इत्मीनान का होना, यहां बिल मारूफ से क्या मुराद है, ये बहुत अहम बात है। आप गौर से समझिएगा इस बात को। देखिए हर सोसाइटी का उर्फ अलग होता है। मसलन पहनने ओढ़ने को अगर देखें, आप पाकिस्तान में हैं, किसी को साड़ी पहना देखेंगे आप कहेंगे वाह जी आज आपने साड़ी पहनी है, बड़ा ऑट लगेगा, थोड़ी देर पहन के लोग थक जाएंगे। आप इंडिया में जाएं, बांग्लादेश में जाएं, घरों में काम के दौरान भी साड़ी पहनते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि साड़ी इंडिया और बांग्लादेश में मारूफ है, पाकिस्तान में नहीं है। ये एक सिंपल सी मिसाल दी आपको। जुब्बा पहनना, लॉन्ग शर्ट, सॉफ जो मर्द अरब मुल्कों में पहनते हैं, पाकिस्तान में पहनेंगे तो लोगों को अजीब लगेगा। शलवार कमीज पाकिस्तान में मारूफ है, तो हो सकता है कि बाहर के मुल्कों में नहीं मारूफ होगी, ठीक है ना। तो मारूफ कहते हैं जो सोसाइटी में एस्टेब्लिश्ड हो चीज। पहले हम कहते थे कि पैंट शर्ट पहनना औरतों का वेस्टर्न कंट्रीज में मारूफ है, पर हमारे मुल्कों में गैर मारूफ है, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि अब वहां भी हमने मारूफ कर दी है, क्योंकि अब हम काफी ज्यादा तरक्की जो कर गए हैं, तो इसी चीज में तरक्की की। तो मारूफ क्या कि जिसको वो खानदान मारूफ समझे, जिसका वो कपल है, शौहर बीवी एक दूसरे के साथ उस तरह जिए जैसे उस पूरे खानदान का रिवाज है। आप देखिए ना वेस्ट में अगर मर्द वैक्यूम कर दें इट्स ओके, और आपके मियां पाकिस्तान में झाड़ू पकड़ के सफाई कर रहे हो तो बातें मिलेंगी ना आपको, वो मारूफ नहीं है। यहां मर्द बर्तन मशीन में लगा दें धो दें कोई बात नहीं, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दें सोके, पाकिस्तान में कोई के मैं कपड़े धो के आता हूँ उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ जाएगा कि कपड़े ही धोने दे तूने तो फिर तेरी शादी का क्या फायदा है ना। तो ये मारूफ होता है। ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है कि उसने मारूफ कहकर घरों को टूटने से बचा दिया। यहां लिखिए आज जो शादियां मैंने अपनी आंखों से देखी ना वेस्ट और ईस्ट के कॉम्बिनेशन से होती है, लड़की मैं अमेरिकन है तो लड़का पाकिस्तानी है, और लड़का जो है वो अगर यूके का है तो लड़की जो है वो पाकिस्तान की है, अक्सर क्यों नहीं चलती। मारूफ का फर्क है, लड़का वेस्ट का मारूफ होता है, लड़की पाकिस्तान की मारूफ होती है। तो अगर शादियां ऐसी की भी जाए ना तो पहले से माइंडसेट बनाना चाहिए, टर्म्स फर्क है। लड़की कुछ बोलती है वो कहते मैंने कुछ नहीं बोला, लड़का जो है वो परेशान हो जाते कहते इसने मुझे गाली दी है। आप देखिए ना हेलो गाय, अब ये गाय आप यहां कह रहे हैं गाय गाय, पाकिस्तान में किसी किसी मियाँ को है गाय, वो कहते हैं तुमने मुझे गांव बना दिया, मैं अल्लाह की गांव, समझ गए ना। अब आपको ये पता है यहाँ गाय किसको कहते हैं, वो गाय लड़को लोगो। गे गे लफ्ज कितना, यानी डिक्शनरी दे से देखे बहुत खूबसूरत लफ्ज है गे, खुश होना। आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में बच्चों को ही गे हो कहेंगे, हो ये होमोसेक्सुअल है। तो ये मारूफ का फर्क समझा रही हूँ। शादी के बनने में आप भी जब भी शादियां करते हैं अपनी, बच्चों की, घर वालों की, इस मारूफ को जरूर देखें, या फिर बच्चियों को और बच्चों को पहले से बताएं कि देखो वहां ये होगा, यहाँ ये होगा, ये यहाँ का मारूफ है, वो वहां का मारूफ है। इस पे कोई कैद नहीं आप लगा सकते कि इस्लाम कोई हद खड़ी करता है। कहीं मर्द का नाम लेती हैं औरतें, कहीं जी कहती हैं, कहीं कुछ भी नहीं कहती। ये सब कुछ मारूफ में होता है। तो यहाँ ये सब चीजें आ गई कि मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से रहे, हर वक्त तमाशा ही ना लगा रहे घर में, कौन क्या करेगा, ये कुछ होगा। ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आगे देखिए कितने प्यार से अल्लाह ताला ने कहा, देखो ये नसीहत की जाती है तुम्हें, तुम्हारे घर को अल्लाह तोड़ना नहीं चाहता। अल्लाह को पता है कि तुम इस घर को बनाकर रखो, लेकिन इस नसीहत को कौन मानेगा जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है। ज़ालिकुम अज़्का लकुम, ये पाकी है तुम्हारे लिए। लिखिए ज़ालिकुम क्या है, अब आपका जहन मुझे पता है बहुत इधर उधर हो चुका है। ज़ालिकुम से मुराद पहले ही हिस्से में आयत कहें यन केहना अज़वाज हुन्ना, अपने ही शौहर से दोबारा निकाह। अब वापिस आइए इस आयत पे, आपको बताया कि जब एक या दो तलाक के बाद मियां बीवी अलग हुए होते हैं तो इद्दत के बाद पहले शौहर से भी निकाह हो सकता है, दूसरे से भी हो सकता है। अल्लाह की चॉइस या अल्लाह सुबहान तला का मशवरा क्या है कि अगर दोबारा उस लड़की का रिश्ता आता है ना, दो रिश्ते आते हैं, एक बाहर से आता है, एक पहले का ही आता है, शर्त ये है कि ये सारी ऊपर की बातें, घर बनाना है, सच है, ठीक है, तो कहा फिर पहले को चूज कर लो। वली को, वारिसों को, घर वालों को अल्लाह ताला कहते हैं कि ये ज्यादा पाक है। एक मर्द के साथ एक औरत का पर्दा खुल गया, एक दूसरे के साथ बेतकल्फी हो गई तो अज़का लकुम अतहर। औरत अपनी फितरत के एतबार से बाहया होनी चाहिए, उसको हया आए कि कोई मेरे जिस्म को देखेगा ऑपरेशन करते हुए, इंजेक्शन करते हुए, कुछ भी यहां तक नहीं कर सकती, तो कहां कोई औरत ये पसंद करेगी कि मेरे जिस्म का ऐब कोई दूसरा मर्द भी देखे। तो कहा कि ये ज्यादा पाक है। अजका भी कहा और अथर भी कहा। अजका क्या है, जका से तस्किया, तहारत। अमूमन ये किसके लिए आता है, बातनी चीजें, इनसाइट, तकवा और जज्बात, यानी आते हैं, मिल गई हैं, अब पता चल गया इनको क्या पसंद है, इनको क्या नहीं पसंद, ये इस बात पे खुश होती है, ये इस बात पे नाराज हो जाती है। और अथर क्या है, फिजिकल तहारत। शौहर बीवी के ताल्लुक में ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। अपेरेंटली भी मर्द औरत का ताल्लुक बहुत पाक और साफ होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, और इनरली भी औरत के अंदर यानी जज्बात भी पाक हो। यानी आप ये कह लें कि अजका से क्या मुराद है, उस औरत की सोचें पाक हो, उस मर्द की सोचें पाक हो। ये नहीं कि मर्द और है तो बीवी किसी और की है तो सोचती किसी और को है, और मर्द किसी और का है तो सोचता किसी और औरत को है, ये गंदगी है। अल्लाह कहते नहीं, उसका चाहिए। ये बहुत जरूरी है शौहर बीवी के रिश्ते में क्लीनलीनेस की, प्योरिटीज की, सोचों की, जज्बों की क्लैरिनेस बहुत जरूरी है। और इसी तरह फिजिकली तहारत तो आप सब समझ ही गए हैं, वो सब भी इसके अंदर आता है। दिल सोचें, जहन पाक होगा, कल पाक होगा, दिल खुश होगा, फिर घर देर तक चलेगा। और फरमाए वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमून, अल्लाह ताला खूब जानते हैं और तुम नहीं जानते। बुनियादी तौर पर इस आयत के पीछे बहुत सारे वाकयात भी आते हैं, लेकिन माकल बिन जस्सार का नाम मुझे जुबानी याद है इसीलिए मैं हमेशा उसको कोट करती हूँ। माकल बिन जस्सार की बहन थी, उनके शौहर ने उनको तलाक दी, तलाक के बाद वही 3 माह गुजरे, औरत घर आ गई, रिश्ते आने लग गए इधर उधर से, पहले शौहर ने भी रिश्ता भेज दिया, तो माकल को बड़ा गुस्सा आया। जैसे आज हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी गैरत आती है, चल भाग जा, पहले हमारी बहन को तूने इतना सताया, खबरदार हम इसको भूखा मार लेंगे, हम खिला नहीं सकते, होती है ना जज्बाती बातें, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही होती हैं। माकल को गुस्सा था अपने बहनोई पे, चलो मेरी बहन को पहले इतना सताया तो अब और सताना है, कहा चलो भाग जाओ, मैं नहीं निकाह करूंगा, मैं नहीं करूंगा अपनी बहन का निकाह तेरे से। अच्छा, बहन चाहती थी अंदर से, क्योंकि मैंने फिर बताया ना कि औरत अपनी तबीयत के एतबार से जैसा भी हो वो कहती यही ठीक है, मैंने दूसरा जायका लेकर क्या करना है, उसमें पता नहीं और कितनी खराबियां होंगी। यही बात हुई, तो जब माकल ने कहा नहीं करना तो ऊपर से आयत आ गई, ला तअदलू, ना रोको अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को। तो माकल ने कसम खाई हुई थी पहले, तो फिर उसके बाद उन्होंने उस कसम को तोड़ा और अपनी बहन का निकाह वहीं किया। عدت گزر چکی تھی اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا تھا، تو آپ دیکھیے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ بھائی بہن یا ماں باپ انوالو ہو کے رشتے توڑ دیتے ہیں، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجھے آپ بتائیے، ذرا صاحب ریلیکس ہو، اگر طلاق کا یہ طریقہ آپ نے نہ سمجھا ہوتا جو ہم نے سمجھ لیا اب ماشاءاللہ، تو یہ آیت کیسے سمجھ آتی؟ اتنے لوگ اس ایک آیت پہ الجھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، دیکھو اس میں تو حلالہ بھی نہیں ہوا، پھر وہ کیسے اس اپنے پہلے مرد سے نکاح کرے؟ تو آپ کو کلیئر ہوگی، حلالہ ولالہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ ایک یا دو طلاقوں کے بعد سے الگ ہوئے ہوئے تھے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں کل بھی سوچ رہی تھی یہ چیزیں دیکھتے تیاری کرتے ہوئے کہ الحمدللہ اس وقت بھی امت مسلمہ میں 80% لوگ تو میرڈ ہی ہیں نا، شادی کے قابل ہیں، جو یا چھوٹے ہیں شادی ہو جائے گی۔ ابھی ہمارے کلچر میں یہ اتنا نہیں ہوا کہ شادی نہیں کرنی، حیرت کی بات ہے۔ آپ اپنی دوستوں، خالاؤں، پھوپھیوں، مامیوں سب پہ لے کے بیٹھ کے سوچیں جو قرآن سے نہیں گزرے ہوئے، میرڈ کپل ہیں اور ان کو طلاق کا طریقہ نہیں پتا۔ جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں نا، چاہے وہ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے چاہے 10 گھنٹے کی، 5-6 منٹ وہ آپ کو پہلے ضرور سیفٹی دکھائیں گے انسٹرکشن۔ جہاز گرنے لگے، کانپنے لگے، ٹوٹنے لگے، کب سیٹ بیلٹ باندھنی ہے، کب نہیں باندھنی، کرتے ہیں نا آپ، کہنا میں تو جی 20 بار گئی ہوں، اس سلائڈ کو بند کرو، مجھے پتا کیا کرنا ہے، کہتے رہے انہوں نے کر کے دکھانا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر ان کیس آف ایمرجنسی جہاز گر گیا یا گرنے لگا تو کیا ہوا؟ اور اللہ نہ کبھی گرے، جب سے بیٹھے آپ لوگ نہیں گرانا، اللہ آگے بھی خیریت رکھے۔ اچھا، جہاز میں بیٹھتے ہی فوراً ایمرجنسی کی باتیں آپ نے سن لی، تو شادی کرنے کرانے سے پہلے کدھر ماں باپ کے وہ ایجنڈے میں لکھا ہوتا ہے کہ ان لڑکی لڑکوں کو یہ بھی پڑھانا ہے کہ اگر شادی نہ نبھی تو کیا کرنا ہے، طلاق کی نوبت آ گئی تو کیسے دینی ہے اور کیسے لینی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال 10% سے زائد، 10 بھی میں نے سچی بات ہے پیار سے کہہ دیا، جو میرے ارد گرد لوگ ہیں اور اسپیشلی میرے گرد تو اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں، 5% سے بھی کم اسٹوڈنٹس کو یہ آیتیں پڑھنے سے پہلے یہ باتیں بتا ہوتی ہیں۔ کیا آپ میری بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ ہے ہی نہیں۔ خاص طور پہ ہمارے کلچر میں چونکہ فقہ حنفی کے طور پر طلاق اور 3 طلاقیں اور اکٹھی طلاقیں، بھائی یہ اس ایشو میں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 ضرورت نہیں، جب ایک سے کام چل رہا ہے ہمیں 3 کی ضرورت نہیں۔ اور اس سے کوئی مسلک کا امام یا استاد انکار نہیں کرتا کہ طلاق کا طریقہ یہی ہے، بات سمجھے؟ آپ ایک سوال لکھیں، مجھ سے پوچھیں کہ آپ کہہ رہی ہیں بار بار کہ ایک دفعہ ہونے سے ہی طلاق ہو جاتی ہے، تو کیا فقہ حنفی میں بھی ہو جاتی ہے، فقہ شافعی میں بھی ہو جاتی ہے، مالکی میں بھی ہو جاتی ہے، احمدی میں، سب میں ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن بول رہا ہے، تو پھر 3 کی ضرورت کیا؟ وہ ایک ایسا پیٹی ایشو بنا ہوا ہے جس کو آپ کہیں دا موسٹ فیمس ایشو آف اسکالرس، کہ جی 3 طلاقیں اکٹھی، 3 طلاقیں بعد میں عمر کے دور میں 3 ہو گئی تھی، سنے ہوئے ایشو۔ آپ کہیں ہمیں اس ایشو تک جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم تو قرآن سے آیتیں سمجھ رہے ہیں، جس کو فقہ پڑھنی ہے سمجھے، جہاں مرضی جا کے سنیں، طریقہ یہی ہے۔ اور سب علماء آئمہ کرام قرآن کی آیتیں پڑھ کے، اب کیا خیال ہے امام ابو حنیفہ نے یہ آیتیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ انہوں نے یہی طریقہ بتایا تھا، یہ بعد میں لوگوں نے 3 تک تو میں کہتی ہوں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات تو کافی ہو گئی۔ اس ایک آیت سے ایک اور بہت سائڈ کا ایشو ملتا ہے، کوئی آپ میں سے بتائے تو جینیس ہے وہ کلاس کا۔ چلے اشارہ دے دیتی ہوں، فلا تعدلوا ہن میں وہ لفظ چھپا ہوا ہے، عدل نہیں ہے یہ، اللہ کے بندو عزل ہے۔
استاد جی، یہ طلاق کی قسم ہے کہ کون سی والی طلاق دیں گے تو دوبارہ سے وہ رجوع ہوگا؟
دیکھیے اب آپ لکھیے، فلا تعزلو ہننا، کس کو منع کیا جا رہا ہے؟ ولیوں کو۔ اس سے نکاح میں ولی کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ شادی شدہ عورت تھی نا پہلے، ایک میریڈ عورت 4 بچوں کی ماں، وہ بھی اپنا دوسرا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ ولی جب تک نہ مانے، نہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ حدیث میں صاف بخاری کی روایت، لا نکاح الا بولی، نکاح ہوتا ہی سوائے ولی کے ساتھ۔ ترمذی کی بھی روایت ہے اور بھی بہت ساری اس میں روایتیں ہیں۔ دوسری بات ہے، عورت کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ اور تیسری بات اس سے ایک پتہ چلتی ہے کہ ولیوں کو بھی اپنا حق غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اب باپ کہتا ہے چونکہ پتہ ہے میرے بغیر تیری شادی نہیں ہونی، تو میں نے تو کرنی اپنے بھائی کے بیٹے سے تیری، جس کو نماز بھی نہیں آتی، یہ بھی نہیں ماننا، مجبور نہیں کر، کیونکہ اللہ ولیوں کو ڈانٹ ہی رہے ہیں نا کہ تم اپنا حق زیادہ نہ استعمال کرو ضرورت سے زیادہ۔ اور اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جبرن شادی نہیں کرنی چاہیے۔ फिर इसी तरह से अगर कोई औरत खुद शादी कर ले अपनी, फिर क्या होगा? हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जो औरत अपने वली के बगैर निकाह करती है, इसका निकाह बातिल है। अगर इससे सोहबत हुई, इसकी शर्मगाह हलाल करने की इवज इसके लिए हक महर है। अगर वो इख्तलाफ करे तो जिसका कोई वली नहीं, बादशाह उसका वली है। तिरमिजी की रिवायत है ये, यानी औरत का निकाह होता ही नहीं है। सिर्फ एक सूरत है औरत के पास, लड़की है रिवर्ट हो गई, अब बाप क्रिश्चियन है, जीव है, हिंदू है, लड़की मुसलमान हो गई। अब वो हिंदू बाप एक मुसलमान मर्द से अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा ना। इस सूरत में फिर मुसलमानों का इमाम, ऐसे जो इमाम होगा वो करेगा, दैट्स इट। यानी जब बाप या वली बेदीन जगह पे रिश्ता कर रहा है, बेजोड़ रिश्ता कर रहा है, और वो रिश्ता भी ऐसा है कि जो अगली जिंदगी पे असरअंदाज है, फिर वो औरत अपना हक जाकर इमाम को दे देगी, अपने वक्त का, जो जैसे अबू बकर थे या उमर थे, खलीफा मुसलमीन में होंगे, वो फिर उनका निकाह करेंगे। अदरवाइज औरत खुद निकाह नहीं कर सकती। अच्छा, जबरदस्ती अगर कोई कर दे वली निकाह, तो औरत को हक हासिल है, ये पीछे भी बात हुई थी कि अपना निकाह रखे या वापस कर दे। बहरहाल, अगर वली और बेटी में झगड़ा हो जाए फिर क्या होगा? तो फिर अदालत में केस जाएगा और वो सरकमस्टांसिस देखेंगे, और फिर उसके बाद जो सच पे होगा उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। फिर इसके बाद एक और चीज पता चलती है कि शादीशुदा जिंदगी का नुक्ता आगाज बाहमी रजामंदी से होना चाहिए। दोनों तरफ से मवाफकत की नीयत होगी तो घर चलेगा। मैं सोचती हूँ कि गाड़ी के दो पहिए, दो अगले दो पीछे, चारों की हवा, पानी, तेल, अलाइनमेंट एक जैसी होगी तो गाड़ी चलेगी। चार में से एक पहिया रुक जाए और तीन उसको घसीटते रहेंगे, थोड़ी देर में पंक्चर हो जाएगा। यहां भी यही है, तरादाउ बैना हो, आपस में एक दूसरे के साथ ये मामला होगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ लफ्ज़ाली का यू अजू भी, वस वस कहते हैं दिल को नरम करने वाली चीज। अल्लाह कहते हैं ये दिलों के अंदर नसीहत जाएगी फिर बात समझ आएगी। सवाल पैदा होता है, नसीहत दिल तक कैसे जाती है? जैसे अभी आप और मैं कुरान पढ़ रहे हैं, सुन तो हम सारे ही रहे हैं, दिल किसका डर है, किसका दिल अंदर तक घुस रहा है, काम रहा है? जिसको अल्लाह की जात और आखिरत पर यकीन होगा। जब इंसान इस दुनिया से ज्यादा वसी आखिरत पर तवक्कुल करता है और दिल की पसंद अल्लाह की रजा के ताबे हो जाती है, फिर अल्लाह ताला राजी होता है। जब अल्लाह की मर्जी को आप दी बेस्ट समझ के उस पे अमल करने लग जाएंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए इसमें बहुत ही सारे आसानियों के मामले कर देगा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तलाक का टॉपिक पूरा हुआ। कोई सवाल, कोई बात रह गई? जी
जैसे अभी मुसलमान हो निकाह करे तो उसका वली ना हो साहब, तो आपने कहा कि हाकिम हो, तो इन मुल्कों में तो कोई फिर कौन होगा?
ये इनका सवाल है कि नॉन मुस्लिम मुल्क में रहते हैं और वहां अगर वली और बेटी में झगड़ा हो गया या नहीं सेटिंग हुई तो कौन होगा? फिर मुसलमानों का कोई इज्तमाई लीडर, कोई जमा इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमेरिका में आम है इसना है, उससे अंडर में छोटी पे या IS चेच और इतना बहुत है। यानी ऑर्गेनाइज तरीके से जहां मुसलमान रहते हैं वहां पूरी अमेरिका, यानी अमेरिका और कनाडा के मुस्लिम्स को एक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है, उसको नेट कहते हैं। नेट नेट के अंडर फिर दूसरे लेवल पे इसना है। इसना पूरे अमेरिकन और कैनेडियन मुस्लिम्स के हकूक, राइट, गवर्नमेंट से बात करनी, मनवाना, ऑर्डिनेंस फलां फलां, उसके अंदर है। फिर वो इसना के अंडर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इकना है, फिर इसी तरह से ISEH है, मुस्लिम लीग्स हैं, बहुत सारी हैं। तो फिर जो भी उस शहर का बड़ा मुस्लिम लीडर जिसको एक अहमियत हासिल होगी सोसाइटी में, फिर वो बीच में फैसला करेगा। हलाला का लफ्ज हलाल करने से बना ली हम पाकिस्तानियों ने, लफ्ज हलाल है मौजूद हलाला, बट अलाउड नहीं है। यानी जो लोग ये सोचे ना कि हलाला कहते ही इसको है कि किसी से वक्ती तौर पे शादी करना कराना, ये गलत मिस यूज ऑफ दिस टर्म है।
मर्द के पास इख्तियार है कि अगर दो एक या दो तलाकें देने के बाद वो दोबारा रुजू कर सकता है, तो अगर औरत खुला ले चुकी है और काफी टाइम गुजर गया है, तो फिर क्या होगा? अगर वो आपस में मिलना चाहते हैं तो फिर उसका क्या?
जी, ये बहुत अहम सवाल है, वेट करें किताब तलाक पढ़ने का। यदि निकाह के बाद तो मर्द तलाक के बाद रजू कर सकता है, तो खुला लेने के बाद क्या औरत भी रजू कर सकती है? नहीं कर सकती। औरत कभी अपना घर नहीं तोड़ेगी, याद रखें। अक्लमंद औरत वही खुला लेगी जिसके पास अब कोई चांस नहीं रह गया। इस पे वाक्या मौजूद है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के पास जब कोई औरत आती थी ना कि मुझे अपने मर्द के साथ नहीं रहना, तो उसके टेस्ट लेते थे। एक औरत आई कहने लगी कि मुझे अपने मर्द के साथ नहीं रहना, तो हजरत उमर ने कहा कि जाओ इसको फलां घोड़ों और जानवर जहां बांधते ना अस्तबल, इसको वहां बंद कर दो, एक रात इसको को कि ये वहां रहे। जानवरों के साथ एक रात उसको रखा, अगले दिन सुबह बुलाया, कहा सुना औरत कैसी रही? कहती मेरी आज की रात जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। क्या मतलब? कि वो इतनी सताई हुई थी अपने शोहर के हाथों कि जानवरों के बाड़े में रहकर उसको सुकून मिला। तो हजरत उमर ने कहा कि अब ये सच्ची है, जाओ इसका खुला करवा दो। बात समझ गए? औरत अपने मिजाज के अतबार से अपना घर नहीं तोड़ती, ना समझ होती है। जी जी बोले।
एक सवाल और के इसकी खुला की जो मुद्दत है वो 1 महीना
एक
है।
महीना
1 महीना तो इसमें औरत जब से वो फैसला कर ले अपने दिल से और अदालत पहुंच जाए, यार शोहर उसको नहीं तलाक दे रहा, वो अदालत पहुंच जाती है कि मैंने मैंने फारिग करना है इसको, उस वक्त से वो 1 महीना या कि यहाँ पे अगर औरत खामद अगर नहीं तलाक दे रहा तो उसको 2 साल लग जाते हैं इस पीरियड में, वो 2 साल इंतजार करेगी जबकि अदालत उसका केस फारिग करेगी या कि जब उसने अपने दिल से फैसला कर लिया वो अदालत तक पहुंच जाती
नहीं,
है?
जब उसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी। यानी ये तो अब हमारे इन मुल्कों के चक्कर में है ना हम लोग, लेकिन अगर मुस्लिम अदालत होगी। हजरत उमर का दौर है, एक औरत आई मुझे खुला चाहिए नहीं रहना, कहा जाओ कर दिया, उससे 1 महीना बाद खत्म बस। तो ये तो एक लीगल एस्पेक्ट है ना जो हमारे इन मुल्कों में जहां हम रहते हैं।
फिर सर
जी
मेरा एक सवाल है, ये लफ्ज जो बिल मारूफ है इससे मुताल्लिक कि इसमें दो खानदानों का यानी आपस में बताया गया कि काफ़ी ये सारी चीज़ें जो वो मैच करते हों, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई एक दीन वाला लड़का ही चले बहुत ज़्यादा दीन से करीब है, वो ऐसी लड़की से शादी उसके घर वाले करना चाहें जिनका दीन से कोई खास ताल्लुक नहीं है, तो ये होगा इसमें?
नहीं करनी चाहिए। देखिए हम बिजली के दो तार जोड़ते हैं तो पहले देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, किस मुल्क की बिजली फर्क है क्या है। तो दो डिफरेंट मिजाज के लोगों को एक साथ रखने का मानी एक्सपोजर है। पहले अंदर खत्ते होंगे झगड़े, फिर बाहर शुरू हो जाएंगे। ऐसी शादियां नहीं करनी चाहिए। आपकी बच्चियां बेदीन है ना, फिर खुल के बेदीन दे दें, उसे को ढूंढ लो जिससे मर्जी कर लो जाओ। किसी ने पूछा कि अच्छा बेनमाजी और लड़की है तो फिर उसका निकाह? उन्होंने कहा मुशरिक से भी कर दो, वो दोनों है ही अतयीबातुल्लतयीबीन। मैं नहीं कह रही, मैं आपको किसी की बात समझा सुना रही हूँ कि ये नहीं एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना। अब एक मर्द दिन में 5 बार मस्जिद जमात के लिए जाता है, लड़की घर में भी नहीं पढ़ती, तो दिन में 5 बार जाए यकीन करें लड़ाई होगी। वो कह रही शॉपिंग पे चले, वो कह रहे नमाज पे जाना है, वो कह रही शादी में चले, वो कहते मिक्स गैदरिंग होगी, वो कहती है कि मुझे फलां जगह ले जाए, वो कहता है ये काम ठीक नहीं है। दिन में 15-20 झगड़े होंगे आपकी बिगड़ी हुई बेटी के एक अच्छे शौहर के साथ, तो क्यों उसको अच्छा देख रहे? तो माशा या तो उसको ठीक होने दे या फिर उसको भी खराब ले दे, जाके 4 दिन दुनिया के तो अच्छे गुजारे। यहाँ हमारे तलाक का मौजू पूरा हो गया, मतलब मेरा ख्याल है तलाक A to Z आपको पूरी पढ़ा दी है। अब आगे उसके सब इश्यूज हैं।